नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्य विद्युत बोर्ड ने 31 दिसंबर तक विद्युत बिक्री से अर्जित किया 300 करोड़ रुपए का राजस्व। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला शहर में पर्यटकों की सुविधा सहित स्वच्छ व्यवस्था बनाने के दिए निर्देश। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, आपदा अधिनियम की दुहाई देकर पंचायत चुनाव टालने का प्रयास कर रही प्रदेश सरकार। और प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए अब तक हुए करीब 4.5 करोड़ पंजीकरण। अब समाचार विस्तार से। राज्य विद्युत बोर्ड ने बीते 31 दिसंबर तक विद्युत बिक्री से 300 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित किया है। ये आंकड़ा 31 दिसंबर 2024 तक इसी अवधि में 206 करोड़ रुपए था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में बताया कि ये उपलब्धि राज्य सरकार की व्यवस्था परिवर्तन नीति का परिणाम है, जिसका उद्देश्य शासन को पारदर्शी, प्रभावी और जनहितैषी बनाना है। उन्होंने कहा कि सुधारों, बेहतर वित्तीय प्रबंधन और तथ्य आधारित फैसलों से बिजली क्षेत्र की पुरानी समस्याओं को दूर किया गया है, जिससे बोर्ड की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए राज्य में हिमाचल प्रदेश विद्युत ग्रिड कोड लागू किया है, जिससे बिजली संचालन राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हुआ है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए शिमला और धर्मशाला में 1.5 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने शिमला नगर निगम को शहर में पर्यटकों की सुविधा और स्वच्छ व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। कल देर शाम मॉल रोड शिमला और अन्य स्थलों के दौरे के दौरान उन्होंने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए नियमों की सख्ती से अनुपालना करने पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में कचरे का सुरक्षित और उचित तरीके से निपटान करने के लिए भी नियमों को कड़ाई से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में जनसेवाओं में और सुधार के साथ साथ उन्हें सुलभ भी बना रही है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि शिमला ग्रामीण क्षेत्र का विकास करवाना उनकी प्राथमिकता है। शिमला के समीप शोघी में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि संतुलित विकास ही बेहतरीन भविष्य की कल्पना को पूर्ण कर सकता है। विक्रमादित्य ने कहा कि हम जनप्रतिनिधियों का परम दायित्व है कि जनता के कार्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। इस दौरान उन्होंने शोघी में नए पंचायत घर का लोकार्पण और आनंदपुर पंचायत में पंचायत घर सहित 2 संपर्क मार्गों का शिलान्यास भी किया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार आपदा अधिनियम की दुहाई देकर पंचायत चुनावों को टालने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि प्रदेश में आपदा को 7 माह गुजर चुके हैं, लेकिन राहत के नाम पर सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है। ऊना में आज पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर सत्ता में आई थी, लेकिन आज प्रदेश के हर हिस्से में माफिया का बोलबाला है। इससे पहले उन्होंने ऊना में भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी की बैठक में भी शिरकत की। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आज हमीरपुर जिला के जामली धाम में वरिष्ठ कार्यकर्ता स्नेह मिलन कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि ये आयोजन पार्टी के इतिहास और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का सराहनीय प्रयास है। धूमल ने कहा कि आज पार्टी जिस स्थान पर है, वह वरिष्ठ और समर्पित कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और निस्वार्थ सेवा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम उन कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा सम्मान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी की सेवा में समर्पित किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने पंचायती राज चुनावों को लेकर उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के हित, लोकतंत्र की मजबूती और संविधान की पूर्ण भावना के अनुरूप है। उन्होंने न्यायालय के फैसले पर मुख्यमंत्री द्वारा की गई टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण, आपत्तिजनक और न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला करार दिया है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। शेष समाचारों में, पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार ने हमेशा हिमाचल के हितों की रक्षा की है। सोलन जिला में कसौली विधानसभा क्षेत्र की कोरों कैंथड़ी पंचायत में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी वर्गों के हितों के लिए बेहतर कार्य कर रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत अधिनियम 125 दिनों के रोजगार की गारंटी है और कांग्रेस बेवजह इसका विरोध कर रही है।
कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, दुनिया भर की इकलौती पार्टी कांग्रेस है जो गरीब के विकास का विरोध करती, गरीब के काम का विरोध करती है। पूछता हूँ कांग्रेस से, अगर गरीब को जी राम जी में 100 की बजाय 125 दिन की दिहाड़ी मिले, ज्यादा मानदेय मिले, 15 दिन की बजाय अब 7 दिन में पैसा मिले, अगर विलंब होता तो ब्याज समेत मिलेगा, अगर काम ना मिले तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, इस पर विरोध किस बात का है? क्या कांग्रेस गरीब की राहत मिलने से आहत है? गरीब का कल्याण हो, 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए मोदी सरकार में, तो कांग्रेस को दर्द होता है। क्या सोचे कांग्रेस के सदा गरीब विरोधी रहे, केवल गरीबी हटाओ का नारा लगाते रहे, गरीब मिटाते रहे। 4 दशक तक कांग्रेस ने गरीबों के नाम पर राजनीति की और उनको गरीबी में धकेलने का किया।
दूसरी ओर भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने विकसित भारत रोजगार व आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम 2025 को हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए अत्यंत लाभकारी बताया है। सोलन में पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इस योजना को लेकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि ये योजना प्रदेश के गांवों के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि योजना में जियो टैगिंग, जीपीएस मैपिंग, डिजिटल ट्रैकिंग और एआई आधारित सोशल ऑडिट को अनिवार्य किया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।
मनरेगा के लागू होने के बाद पिछले 20 सालों में इस योजना में रही खामियों को सुधार करने का प्रयास किया गया है। इस योजना को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है, डिजिटल माध्यम का प्रयोग करके, और साथ ही साथ इस योजना को विकासोन्मुखी बनाया गया है। मजदूरी के साथ साथ रोजगार के साथ साथ विकास को भी प्राथमिकता दी गई है और 2047 में जो विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उस दिशा में उठाया गया, ये बहुत बड़ा।
इस वर्ष प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए पंजीकरण का आज अंतिम दिन है। इस कार्यक्रम के लिए अब तक करीब 4.5 करोड़ पंजीकरण हो चुके हैं। ये आंकड़ा पिछले वर्ष 3.56 करोड़ के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को पार कर चुका है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि ये पहल वार्षिक संवाद कार्यक्रम से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का तनाव दूर करने का राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका है। उन्होंने विद्यार्थियों से कार्यक्रम में भाग लेकर प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन का लाभ उठाने को कहा है। इस वर्ष के लिए पंजीकरण 1 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ था। प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक ठंड से लोग परेशान हैं। राज्य के कई स्थानों का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया जा रहा है। बारिश व बर्फबारी न होने के बावजूद प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में प्राकृतिक जल स्रोत जमना शुरू हो गए हैं। वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे और धुंध के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने 16 जनवरी तक मौसम के साफ रहने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विद्युत बोर्ड ने 31 दिसंबर तक विद्युत बिक्री से अर्जित किया 300 करोड़ रुपए का राजस्व। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला शहर में पर्यटकों की सुविधा सहित स्वच्छ व्यवस्था बनाने के दिए निर्देश। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, आपदा अधिनियम की दुहाई देकर पंचायत चुनाव टालने का प्रयास कर रही प्रदेश सरकार। और प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए अब तक हुए करीब 4.5 करोड़ पंजीकरण। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन सुन सकते हैं आप 9:20 पर। नमस्कार।